शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम ब्रह्मा कुमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जिसका आज हम स्मृति दिवस मनाते हैं, पुण्य दिवस मनाते हैं। मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती हर ब्रह्मा कुमारी बहनों के लिए एक आदर्श ब्रह्मा कुमारी है। ब्रह्मा कुमारी जीवन किसको कहा जाता है, उसका प्रत्यक्ष सबूत मातेश्वरी जी का जीवन एक खुली किताब की तरह है, जिसको हर ब्रह्मा कुमारी बहनें पढ़ करके उसमें से ही ये प्रेरणा प्राप्त करती है कि मुझे अपना जीवन ऐसा ही बनाना है। मैंने भी अपने जीवन की इस आध्यात्मिक जीवन शैली की प्रेरणा प्राप्त की मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के जीवन कहानी से। उनके जीवन कहानी में कई बार ये बात सुनी कि मातेश्वरी जी कई प्रकार के दिव्य गुणों की मूर्त थी, धैर्यता, गंभीरता, हृदय की विशालता, हर प्रकार की दिव्य गुणों की मूर्ति मातेश्वरी जी थी। परमात्मा में निश्चय इतना अटूट था, पहले दिन जब वो संस्था में आई और पिताश्री ब्रह्मा बाबा से मिले, ब्रह्मा बाबा ने एक ही सवाल उन्हें पूछा कि किसको पसंद करोगे, मोर मुकुटधारी पिताम्बर धारी को या पैंट सूट वाले को। और उसी समय मम्मा ने अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लिया कि आज के बाद मेरा जीवन उसी मोर मुकुटधारी पिताम्बर धारी के साथ। और इस तरह से श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्यार कि बस भविष्य जन्मों में उनके साथ ही हर जन्म बिताने का एक संकल्प कर लिया और अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा के द्वारा रचा हुआ इस अविनाशी यज्ञ में समर्पित कर दिया। परमात्मा के हर महावाक्य में इतना निश्चय बुद्धि होकर के वो परमात्मा के ज्ञान की मुरली को सुनती थी, इतनी एकाग्रता से कि उस प्रवचन के बाद, उस मुरली के बाद जब मम्मा से पूछा जाता था कि क्या महावाक्य सुने, तो पूरे महावाक्य जैसे वर्ड टू वर्ड रिपीट होता हो, इस तरह से भाव सहित उन बातों को वो स्पष्ट कर देते थे। तभी पिताश्री जी ने उनको सरस्वती का टाइटल दिया कि साक्षात ज्ञान की देवी सरस्वती है, हर बात को ईश्वरीय महावाक्य का इतना स्पष्टीकरण खुद की बुद्धि में भी और जो उनके सम्मुख होते थे उनके सामने भी एक एक बात को इतना अच्छी तरह से स्पष्ट करते थे। मातेश्वरी जी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब ब्रह्मा बाबा के पास में आए, मात्र 14 साल की आयु थी, लेकिन उसी समय उनके जीवन की धारणाओं को देखते हुए ऐसा महसूस होता था जैसे साक्षात मां सबकी पालना करने वाली, जितने भी इस यज्ञ के अंदर समर्पित भाई बहने थे, यज्ञवत्स थे, उन सभी यज्ञवत्सों की पालना की जिम्मेवारी बाबा ने उन्हें दिया। और तब से वो मां का स्वरूप बन गई और हरेक उन्हें मम्मा कहने लगे, वहां तक कि पिताश्री जी भी उनको मम्मा ही कहते थे। मातेश्वरी जी की शारीरिक मां भी यज्ञ के अंदर थी, वो भी उन्हें मां ही कहती थी, मम्मा ही कहती थी। और ऐसे वो विश्व की जगत अम्बा बन गई। प्रैक्टिकल उनका जीवन, जैसे कहा कि अनेकों के लिए प्रेरणा देने वाला, बाबा ने इसीलिए पांच बहनों का जब ट्रस्ट बनाया और अपनी सारी संपत्ति सहित सब कुछ समर्पित कर दिया, उन पांच बहनों में सर्वप्रथम मम्मा थी और इसीलिए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम एडमिनिस्ट्रेटिव हेड रही। बहुत सुंदर तरीके से यज्ञ वत्सों की पालना करते, ज्ञान से उनको सींचते थे, उनका जीवन सुधारते थे, हर एक ज्ञान की बात को बड़ी स्पष्टता के साथ, किसी के मन में कोई सवाल न रहे, इतनी स्पष्टता के साथ हर एक बात को क्लियर करना। उसी के साथ साथ जब निश्चय बुद्धि की बात आती है तो परमात्मा के महावाक्य में साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा परमात्मा के कहे गए महावाक्यों में और बाबा के वाक्यों में भी मम्मा इतनी ही निश्चय बुद्धि थी। दादी जी ने एक बार मम्मा की इस बात को शेयर करते हुए बताया था कि एक बार माउंट आबू में, मधुबन में एक पार्टी आई थी। 10-15 भाई बहने थे और वो भाई बहने जाने लगे और जैसे ही जाने लगे, पिताश्री जी से विदाई लेने के लिए आए, मातेश्वरी जी वहां बैठे थे और अचानक बाबा के मन में संकल्प आया तो बाबा ने मम्मा की ओर देखकर कहा कि मम्मा, बाबा का विचार है कि इस पार्टी को मैं हलवा खिलाऊं। और तुरंत मातेश्वरी जी वहां से उठे हलवा बनाने के लिए और बड़े प्यार से हलवा बनाते रहे। पार्टी का जाने का वक्त हो गया, हलवे की बात शायद दिमाग से निकल गई और विदाई लेकर के एक एक बाहर निकलने लगे, जाने लगे। कुछ भाई बहने आए मम्मा के पास, कहने लगे, मम्मा वो पार्टी तो जा रही है, अब आप इस हलवे का क्या करेंगे। मम्मा फिर भी प्यार से हलवा बनाती रही। पार्टी वहां से निकल गई, बाबा ने विदाई दे दिए, वो पार्टी बस स्टॉप पर पहुंच गई, मम्मा फिर भी हलवा बनाती रही। किसी ने आकर फिर मम्मा को सुनाया कि बाबा ने विदाई भी दे दी, वो पार्टी तो चली गई, बस स्टॉप पर भी पहुंच गई, शायद बस में भी बैठ गए होंगे, अब तो हलवा बनाना छोड़ दो। मम्मा फिर भी मुस्कुराती रही, हलवा बनाती रही। जब सारा हलवा तैयार होकर के मम्मा बाबा के पास में लेके आए तो ब्रह्मा बाबा ने एक यज्ञ वत्स को कहा कि जाओ बच्चे साइकिल पर, वो पार्टी बस में बैठ गई होंगी, उनको बाबा के तरफ से ये हलवा दे करके आओ। वो भाई साइकिल पर पहुंच गए बस स्टॉप पर और बस स्टॉप पर पहुंचने के बाद उसने, वो पार्टी बस में बैठ गई थी, बस रवाना ही होने वाली थी कि वहां वो भाई ने पहुंच करके हलवा उन सबको दे दिया। अब आप सोचो कि जब उन भाई बहनों को ये हलवा मिला होगा कितने खुश हुए होंगे, कितनी आत्मसंतुष्टि का अनुभव किया होगा, मम्मा को कितना दिल से उन्होंने धन्यवाद दिया होगा। बाबा की पालना, मम्मा की पालना इस तरह की थी। किसी ने बाद में पूछा मम्मा से कि मम्मा चलो ये तो पार्टी को मिल गया, किसी भाई को पहुंचाने के लिए कहा तो, लेकिन आपके मन में विचार नहीं चला कि इतने कम समय में बाबा ने कैसे मुझे ये डायरेक्शन दिया? शायद मम्मा की जगह दूसरा कोई होता था और बाबा भी अगर कहते थे कि बच्ची हलवा बनाना है, या आज हमें कोई कहे तो हम शायद ये अपना तर्क जरूर सुनाते हैं कि टाइम हो गया है, अभी लास्ट मोमेंट हलवा थोड़ी बन सकता है। लेकिन मम्मा ने एक सवाल भी नहीं, एक बात भी नहीं कही। जब ये बात मम्मा से पूछी गई तो मम्मा ने यही कहा कि डायरेक्शन देने वाला कौन था? कोई साधारण व्यक्ति ने डायरेक्शन नहीं दिया था। क्या उन्हें समझ नहीं थी जब मुझे डायरेक्शन दे रहे थे वो कि मम्मा हलवा बनाना है, तो क्या उन्हें समझ नहीं थी कि टाइम हो गया है? जब वो जानते थे उसके बाद भी उन्होंने मुझे कहा, तो मैं फिर अपना विचार क्यों चलाऊं? और इसलिए मम्मा ने बिना कोई विचार के, बिना कोई संकल्प के वो हलवा बनाया। भावार्थ है कि इतना निश्चय बुद्धि के कहने वाला कौन है मुझे, क्या उसको समझ नहीं थी? आज हमें पता होते हुए भी कोई हमारे बड़े अगर हमसे कहे कोई कार्य करने के लिए तो हम अपना तर्क चलाते हैं, लेकिन उनके अंदर ये भाव नहीं था। मम्मा को ऐसी बीमारी हो गई, दुनिया में जितने भी महान आत्माएं हुई है, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, कई लोगों को, ऐसी महान आत्माओं को अंतिम परीक्षा जब जीवन की पार करनी पड़ी तो कोई न कोई ऐसी असाध्य बीमारी हो गई। मम्मा को भी कैंसर हुआ था। लोग कहते थे कि उस समय तो इतनी दवाइयां या इतनी एडवांसमेंट साइंस की नहीं थी, और इसीलिए जो तकलीफ होती थी या जो दर्द और भोगना थी वो शायद कई गुना अधिक होगी। लेकिन मम्मा की सहन शक्ति इतनी अधिक थी कि हर रोज सुबह क्लास में जब आप आकर के बैठते थे बाबा के महावाक्य सुनने के लिए, उसी प्रशांति चेहरे के ऊपर, दर्द की कोई रेखा नहीं उनके चेहरे के ऊपर। कई बार कई लोग सोचते भी थे कि मम्मा को कितनी तकलीफ होती होगी, लेकिन फिर भी चेहरे पर कोई भाव नहीं, कोई बात नहीं। बाबा भी कई बार अमृत वेले उठ करके मम्मा को सकाश देते थे, शक्ति देते थे, लेकिन मम्मा की अपनी शक्ति इतनी अधिक थी और बाबा की शक्ति जब उनको मिलती थी तो जैसे वो दर्द को कहां गायब कर देते थे। शरीर को भले दर्द होता था लेकिन आत्मा के ऊपर जैसे उस दर्द का प्रभाव नहीं था। ऐसी एक निरसंकल्प, निर्विकल्प स्थिति में हमेशा वो बैठती थी। अंतिम घड़ी तक मम्मा ने सेवा की। जिस दिन मम्मा को शरीर छोड़ना था उसी दिन भी शायद दर्द काफी बढ़ गया था, लेकिन उसके बावजूद भी जब बाबा ने मम्मा से कहा कि मम्मा आज आप अपने हाथों से हर एक बच्चे को अंगूर खिलाओ, मधुबन के बगीचे के अंदर बाबा ने अपने हाथों से अंगूर के बेल लगाए थे और उस पर पहला अंगूर निकला था, तो बाबा ने कहा मम्मा आज आपके हाथों से सब यज्ञवत्सों को ये अंगूर आप खिलाइए। मम्मा ने एक एक को बैठ करके बड़ी प्यार से दृष्टि देते हुए इतना स्नेह से एक एक को अंगूर खिलाते रहे और ये एक यादगार बन गया इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में कि 24 जून आज भी मम्मा के दिन हरेक को अंगूर का प्रसाद जरूर मिलता है और मधुबन के बगीचे में अंगूर जरूर लगते ही है और वो अंगूर एक एक पीस भी हरेक को मिलेगा ही। ऐसा यादगार मम्मा ने अपने कर्म से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर बनाया जो हर एक उस बात को याद करते हुए कैसे सहन शक्ति की एक मूरत थी और साथ ही साथ मातेश्वरी की जब वाणी चलती थी तो ऐसी गर्जना होती थी जो लगता था कि जैसे कोई शिव शक्ति आकाशवाणी कर रही हो। और इस तरह की गर्जना आज दिन तक भी किसी के द्वारा सुनी नहीं। कई बार मन के अंदर आता है ये विचार कि काश मैं भी अपने आंखों से इन नेत्रों से उस मातेश्वरी जगदम्बा की मूर्ति को देखती थी। भले मैंने इन आंखों से नहीं देखा लेकिन आज भी एक महसूसता यही आती है कि जब अंतर चक्षु से मैं उस मूरत को अपने सामने लाती हूँ तो यही लगता है कि मम्मा के आशीर्वाद उसके वरदानी हाथ हमारे ऊपर है और उनकी तरह ही मैं अपना जीवन बनाती जाऊं। जैसे मम्मा गर्जना करती थी वैसे ही हमें भी इस ज्ञान को अनेक आत्माओं के सामने स्पष्ट करना है और अनेक आत्माओं की ज्योति जगानी है। इन्हीं भावनाओं के साथ आज मैं अपने हृदय से शत शत प्रणाम करती हूँ उस मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती प्रथम ब्रह्मा कुमारी जो अनेकों के लिए आदर्श है। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।